बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नसीम ज़िंदगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा नसीम।
सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में भी और अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी। जी बिल्कुल, एक मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। उम्मीद करेंगे आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। और हमारे हफ्ते का मौजू मैं जल्दी से यहाँ पर बताता चलूँ चल रहा है, ज़िंदगी में रोल मॉडल की ज़रूरत, एक मिसाली शख्सियत की ज़रूरत, उसको जानने की ज़रूरत, और उस जैसे उसने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह हम लोग भी कोशिश करें उस तरह ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी अहमियत के बारे में इंशाल्लाह हम लोग पूरा हफ्ता गुफ्तगू करेंगे।
तो अपने प्रोग्राम को मुतवर्रिक बनाने के लिए अभी हम लोग चलेंगे साथ में, एक फरमान देखेंगे मासूम का, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम का इरशाद गिरामी है, माह मुबारक के महीने में शब कदर है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस रात में हर चीज को हिकमत की बुनियाद पर तय किया जाता है। इसी रात में उस साल की नेकी, बदी, नफा और नुकसान, रोजी और मौत मुअय्यन होती है। इसी वजह से इस रात को शब-ए-क़द्र कहा जाता है।
जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी, 6:35 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक। और हमारा प्रोग्राम हर रोज़ नश्र किया जाता है आपकी खिदमत में हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 8:30 और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8:00।
जी बिल्कुल, और मैं यहाँ पर मेहमानों के बारे में हसन आप अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर अमजद हयात साहब स्टूडियो में मौजूद होंगे कुछ देर के बाद, और बड़े अहम मौजू के ऊपर वो बात करने जा रहे हैं, एंटीबॉडी जो हमारे बदन के अंदर होती हैं उनके जरिए कैसे इलाज किया जाए। एंटीबॉडी क्या होती है इसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और हम आप लोगों को इस्लामाबाद स्टूडियो भी लेके जाएंगे जहां लैला बतूल साहिबा समाजी कारकुन है, वकील हैं, और उनसे इंशाल्लाह हफ्ते के मौजू के सिलसिले में जो वायरल रोल मॉडल के सिलसिले में, और उसमें वो खास तौर पर बात करेंगे कि गलत रोल मॉडल इंतखाब करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो हमें कहां पर लेके जाते हैं। दोबारा वो समाजी कारकुन है, देखते हैं कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ क्या गुफ्तगू करते हैं।
बिल्कुल, और आप भी हम लोगों के साथ तआवुन कर सकते हैं। व्हाट्सएप हम लोगों का मौजूद है, वाइबर मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, facebook.com/sutmorningshow, इस पर आप हम लोगों के लिए मैसेज भेज सकते हैं। और इंतज़ार करेंगे हम लोग भी कि आप लोग किस हद तक तआवुन कर सकते हैं हम लोगों के साथ। हम लोगों को बहुत खुशी होती है, प्रोग्राम जाग जाता है एकदम आप लोग जब तआवुन करते हैं। तो अभी खुर्रम चले साथ में वर्जिश करें।
बिल्कुल ठीक,
साथ में वर्जिश करते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हमें उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफियत होंगे। आज हम लेट कर की जाने वाली एक वर्जिश आपको सिखाएंगे। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर घर में हमारे साथ ये स्टेप अंजाम दीजिएगा। पेट के बल लेट जाइए। देखिए हाथ जिस्म के साथ लगे होंगे और जो सर है वो जमीन की तरफ होगा और नाक जमीन से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी, जमीन से चिपकाएंगे नहीं। और जैसा कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, देखिए आप, अगर आपको कमर में मुश्किल है तो आप पैरों को ज्यादा खोल सकते हैं। जी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को सामने ले आएंगे। सांस लेंगे और हाथ को जिस्म के पास ले आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को सीधा कर देंगे, और फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे, और सांस लेते हुए हाथ जमीन पर। अब अगले मरहले में हम दोनों पैरों को एक एक करके जमीन से उठाएंगे। इसके लिए हाथ जिस्म से लगे हों और फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे पैर को थोड़ा सा जमीन से उठाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए उल्टा पैर, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा पैर ऊपर लाएंगे, एक बार फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए उल्टा पैर। अब दोनों पैर जमीन पर रख दें। तीसरे मरहले में हम सर को ऊपर की तरफ लाएंगे। देखिए इस मरहले में सर जमीन की तरफ रहना चाहिए। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को उठाएंगे, सांस लेंगे और नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर ले जाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। एक बार फिर सांस लेकर सर को नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। अब आप रिलैक्स हो जाएं। देखिए मैं अपने दोस्तों के साथ आपको ये स्टेप करके दिखाता हूं। इस मरहले में हाथ जिस्म से चिपके हुए होने चाहिए और 2 से 3 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए नाक और जमीन के दरमियान। सांस लेंगे नाक से और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधे पैर को ऊपर लाएंगे और पंजे जमीन की तरफ और खींचे हुए होने चाहिए और पैर को ज्यादा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए उल्टा पैर। अब आप यहां से अपना हाथ हटाइए। देखिए इस पैर को बहुत ज्यादा ना उठाइए कि आपका जिस्म इधर या उधर की तरफ मुड़ जाए, बल्कि थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर। देखिए पैर घुटने से मोड़ा नहीं है बल्कि एकदम सीधा है। सांस लेते हुए नीचे। अगला मरहला, हाथ जिस्म से चिपका हुआ। देखिए इस मरहले में हम सर को ऊपर उठाएंगे, नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सर ऊपर ले आएंगे। देखिए इस मरहले में सर को पीछे की तरफ नहीं लाते हैं, न बहुत ज्यादा उठने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे कमर में तकलीफ हो सकती है। सर नीचे है और सर को धीरे धीरे मोड़ते हैं। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। एक बार फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। और जब सांस छोड़ते हुए ऊपर आते हैं तो सर मुड़ता नहीं है बल्कि सीधा रहता है और अपने नेचुरल हालत में बाकी रहता है। यूं समझ लीजिए कि सर और जिस्म के दरमियान जैसे कोई लकड़ी रख दी गई है और सर मुड़ ना पाए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और सर को नीचे रखिए। ये स्टेप हम आपको करके दिखाते हैं, आप घर में हमारे साथ ये स्टेप कीजिए और जो बातें मैंने बताई हैं उन पर जरूर तवज्जो दीजिए क्योंकि दूसरी सूरत में आपको परेशानी हो सकती है। मैं जमीन पर लेटकर अपना सर उठा रहा हूं, लेकिन आप अपना सर नीचे रखिएगा और 2-3 सेंटीमीटर का फासला हो नाक और जमीन में। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को सीधा करेंगे, सांस लेते हुए हाथ को नीचे ले जाएंगे, फिर सांस लेकर हाथ को सीधा करेंगे। एक बार फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे करेंगे, फिर सांस लेते हुए हाथ को नीचे लाएंगे और हाथों को जिस्म से चिपका देंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा पैर ऊपर उठाएंगे। अब फिर पैर नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए उल्टा पैर ऊपर लाएंगे।
जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी और हमारे साथियों ने बताया इस वक्त हमारा राबता हो गया है लैला बतूल साहिबा से जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और बहरहाल हम लोग हफ्ते का मौजू रोल मॉडल के हवाले से मिसाली शख्सियत या एक ऐसा किरदार जिसके ज़िंदगी पर, जिसके राह पर हम लोग चल के एक बेहतर इंसान में तब्दील हो सकते हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि ऐसी अगर शख्सियत हमारी ज़िंदगी में ना हो, अब तक जो हो तो गुज़श्ता दिनों में हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से बात की, अगर हो तो उस पर रोशनी हम लोग कोशिश की डालें, अगर ना हो ऐसी शख्सियत आप बताइए क्या होगा एक इंसान के साथ।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये बात है कि रोल मॉडल जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ये तो आपको पता चल गया होगा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दरमियान। अब ये है कि रोल मॉडल जो है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं, हम बच्चों से शुरू करते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ अपनी एज में मुख्तलिफ दौरानिया में मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना रोल मॉडल बनाते रहते हैं. छोटे होंगे तो उनके जहन में पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होगी, वो पेरेंट्स को रोल मॉडल बना लेंगे. फिर उसके बाद जो है वो थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा कम्युनिटी के साथ उनका रिलेशन होगा तो वो टीचर्स को रोल मॉडल बना लेंगे. फिर उसके बाद और इंटरेक्शन लोगों के साथ होगा तो अब बच्चों जो है ना वो बहुत जल्दी माइंड सेट अपना चेंज करते हैं, बदलते हैं, बनाते हैं, लोगों की शख्सियत से मुतासिर होते हैं और बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं. तो वो उनकी शख्सियत पे मनफी भी असरात डाल सकते हैं और उनकी शख्सियत पे मस्बत भी असरात डाल सकते हैं. अगर हम शुरू से ये देखें कि बच्चे को रोल मॉडल की ज़रूरत है तो क्या हम पेरेंट्स जो हैं वालदैन वो एज अ रोल मॉडल बतौर रोल मॉडल उनके सामने अपनी खिदमात नहीं पेश कर सकते? अगर पेरेंट्स जो है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अटैच होता है पेरेंट्स से घर में वो, हाँ, तो अगर हम बतौर जो है ना वालदैन रोल मॉडल जो है ना हम बतौर शख्सियत उनके सामने पेश हो जाए तो उससे ये होगा कि बच्चों के बहुत से जो मसाइल हैं और वो जो बाहर रोल मॉडल की तलाश में होंगे वो उनके जस्तजू भी ख़त्म हो जाएगी और पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे और मस्बत तरीके से बच्चों को गाइड करने वाला कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा होते हैं और वो उनकी शख्सियत को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. अब ये है कि पेरेंट्स अगर बतौर रोल मॉडल बच्चे की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो उससे बच्चों की ज़िंदगी में आगे चलकर भी बड़े भी उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकती है और जो मसाइल और परेशानियां उनको छोटी उम्र में पेश आएंगी वो बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लेंगे. आप वालदैन अगर बतौर रोल मॉडल अपने आप को पेश करते हैं तो क्या जिम्मेदारियाँ उन पर होती हैं? अब बच्चे वालदैन पे ये जिम्मेदारी होगी कि सबसे पहले बच्चों की वो शख्सियत उसको अपने से अटैच करें. जितना बच्चों का बॉन्ड वालदैन के साथ अटैच होगा उतना बच्चा जो है वो बाहर किसी भी रोल मॉडल की तलाश में नहीं जाएगा और अपने प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरों से शेयर नहीं करेगा बल्कि अपने वालदैन से शेयर करेगा और उसके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे. पहला ये कि वालदैन बच्चों को लेके बैठें, उनको जो है ना एक जगह पर बिठाएँ और उनसे घर के मामलात डिस्कस करें. जब बच्चों के सामने घर के मामलात डिस्कस होंगे और वो डिस्कशन में बच्चे हिस्सा लेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि क्या क्या हालात और मसाइल पेश आ सकते हैं ज़िंदगी में घर से बाहर. वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वो बच्चों को ये पता चलेगा कि मिलजुल के काम करना किस तरह है, क्योंकि बच्चे बाज़ का ये होते हैं कि किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे होते तो वो ये सीखेंगे कि हमने माशरे में लोगों को किस तरह बर्दाश्त करना है और उनके साथ मिलकर किस तरह काम करना है. दूसरी बात, बच्चों में मस्बत रवैया डालने के लिए कि स्कूल में भी उनके काम आए और बच्चों को स्कूल में जो प्रॉब्लम है वो भी उनको बच्चे उन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. टीचर का अपना रवैया होता है, बच्चों का अपने दोस्तों के साथ अपना रवैया होता है. हर बच्चा मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आता है, मुख्तलिफ अपने ख़ानदान से आता है, मुख्तलिफ उसका मज़हब होता है, तो उन चीज़ों को टैकल करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और वो मस्बत तरीके से दूसरे बच्चों को टैकल करेंगे. अच्छा, एक बात ये हो गई. दूसरी बात यह है कि बच्चों में मस्बत रवैया डालें ताकि वो आगे जाके मस्बत तरीके से और मस्बत जो शोबे हैं ना हयात ज़िंदगी उसमें दाखिल हों. अगर आप बच्चों में मनफी वालदैन डालेंगे, घर में ऐसा माहौल होगा कि गुस्सा, कोई मसला दरपेश हुआ है तो वालदैन उसको गुस्से से टैकल करेंगे उस मसले को, बच्चा देख रहा होगा तो वो बच्चा उससे मनफी रवैया अख्तियार करेगा और वो स्कूल में भी और बाहर भी अपने घर बाहर के लोगों के साथ भी मनफी रवैया रखेगा. उससे वो जो शोभा अख्तियार करेगा या कैरियर अख्तियार करेगा वो भी उसकी मनफी सोच का ही हिस्सा होगा. इसलिए वालदैन बच्चों के सामने मनफी रवैया ना रखें, जो भी मामला हो उसको खुश असलूबी से तय करें ताकि बच्चा भी खुश असलूबी से उसको तय करने की कोशिश करे. चौथी बात यह कि बच्चे माशरे में जो है ना, अच्छा दूसरी बात यह कि बच्चे के साथ जो खाने पीने के आदात हैं, देखिए आपने सारी चीज़ें बच्चे ने घर से अगर वालदैन बतौर रोल मॉडल अपनी शख्सियत को सामने लाते हैं तो बच्चा जो है वो सब कुछ सीख लेगा वहाँ से. अब वो खाने पीने के आदात हैं, वो बाहर बच्चों से गलत और गंदे खाने पीने के आदात सीखने के बजाय घर में अच्छी हेल्दी सेहतमंदाना खाना जो है ना वो खाएगा और वर्जिश ये सारी एक्सरसाइज ये सारी चीजें सीखेगा, उसका टाइम भी सीखेगा किस वक्त मैंने वर्जिश करनी है क्या.
बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लैला बतूल साहिबा का। जैसा कि आपने देखा कि रबता हम लोगों का मुनक़ता हो गया, लेकिन बहुत ही अहम नुकात की तरफ जहाँ तक रबता था बहरहाल हम लोगों का, उन्होंने इशारा किया कि किन यानी आइंदा नस्ल को एक रोल मॉडल कैसे पेश किया जाए। बहुत ही बहरहाल अहम नुकात की जानिब इन्होंने इशारा किया, और ये अगर इन नुकात पर वाकई हम लोग अमल करें तो ये जो फलां किटी और फलां टर्टल और पता नहीं इंसान नुमा जानवर और जानवर नुमा इंसान जो कार्टूनों में होते हैं
वो रोल मॉडल नहीं बनेंगे,
रोल मॉडल नहीं बनेंगे।
और हमारे खास बच्चों को खास तौर बचपन का जो दौरानिया है उसमें बहुत जरूरत है हसन, क्योंकि उसमें बच्चे की अकल इतनी पुख्ता नहीं होती कि वो एक बड़ी ऐसी हस्ती को रोल मॉडल बना सकते। उस टाइम तक वही उसके वालदैन और उसके असातीद ही उसके रोल मॉडल होते हैं, और अगर वही उसको सही रहनुमाई ना दें, हिदायत ना दें, इस सोचते वो लड़क खड़ा जाता है, वो उसकी जिंदगी जो है वो उसी तरह फिर जो है वो कामती कामती आगे बढ़ेगी और वो सही बेहतर जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा जिंदगी में।
और इंशाल्लाह के हम लोगों के नाजरीन भी बहरहाल इस तरह के प्रोग्रामों के लिए मुफीद साबित हों, और हम लोग कोशिश करेंगे बहरहाल अगर हम लोग खुद रोल मॉडल ढंग के नहीं है तो एक ढंग का रोल मॉडल इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर सके। अभी चलते हैं तेहरान की सैर करते हैं,
ठीक है,
और आप लोग देखिए तेहरान कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जी नाजरीन आप लोग देख रहे हैं नसीम जिंदगी, और हम आपको बताते चलेंगे ये जो जगह आप लोगों को दिखाई तोचाल जो इसकी रिसोर्ट है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्की रिसोर्ट माना जाता है और बहुत ही मुनासिब फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल जो लोग स्की के शौकीन हैं या बर्फ़ में खेले जाने वाली वर्जिशों के शौकीन हैं वो आकर, खुद आजकल भी मौसम हो रहा है तो आकर महसूस हो सकते हैं उससे। चलते हैं खुर्रम के पास, हम लोग के मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा।
बहुत शुक्रिया हसन जी, बिल्कुल डॉक्टर आमजा हयात नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में PhD कर रहे हैं तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर साहब से आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे एंटीबॉडीज़ के जरिए इलाज कैसे किया जा सकता है, एंटीबॉडीज़ क्या है ये डॉक्टर साहब से हम लोग पूछते हैं, तो मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से। सलाम अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब आपके, डॉक्टर साहब कैसे हैं? शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब क्या एंटीबॉडीज़ क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया।
शुक्रिया डॉक्टर साहब।
असल में अल्लाह पाक ने हमारे बदन को एक कम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है,
ठीक है,
तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ जो है सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं,
ठीक है, ठीक है, रबते में है,
रबते में,
ठीक है।
तो जब भी कोई बाहर से माइक्रोब्स आता है या जर्म्स आते हैं, फंजाई बैक्टीरिया जो चीज़ भी आता है वो अटैक करता है, तो हमारा बदन उसके खिलाफ डिफेंस सिस्टम जो है वो उसका प्रोवोक हो जाता है, इवोक हो जाता है,
जाग जाएगा,
जाग जाएगा,
ठीक है,
और उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है।
अच्छा।
तो इसके लिए मुख्तलिफ सेल्स है, जैसे कि हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और हर एक का अपना एक फंक्शन होता है,
ठीक है,
लेकिन जो डिफेंस वाले सेल्स हैं उसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स,
ठीक है,
और फिर इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में जिस तरह होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं जिसका मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं,
कोई वायरस को मारता है, कोई बैक्टीरिया को मारता है,
कोई उसको जो है मारता है, कोई जो है दूसरे सेल्स को बताता है कि यहाँ पर इन्वेजन हुआ है,
ठीक, हमला हुआ है, हाँ,
और कोई जो है इस तरह केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि वायरस को या बैक्टीरिया को किल करता है। तो इसमें जो हमारे लिए सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स,
ठीक है,
तो इनका फंक्शन होता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा।
और ये एंटीबॉडीज इसका फिर मुख्तलिफ तरीकों से ये डील करते हैं जरासीम,
जरासीम को,
या तो वो उसको किल करते हैं डायरेक्ट,
ठीक है,
या उसको रिकॉग्नाइज करते हैं,
हाँ, पहचानते हैं,
पहचानते हैं, और दूसरे सेल्स को बताते हैं कि ये जो बंदा आया हुआ है बाहर से जरासीम आया हुआ
है,
तो ये जो है हम पर हमला कर रहा है,
ठीक है, सही है,
और उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करने की कोशिश।
अच्छा,
करता है।
जबरदस्त, सही।
तो ये जो एंटीबॉडीज हमारे बदन में होते हैं तो ये सारे खून में जो है वो सर्कुलेट करते हैं।
अच्छा।
तो जहां पर इन्वेजन होता है, जहां पर जो है बैक्टीरिया वायरस फंजाई का अटैक हो जाता है,
ठीक है,
तो वो उसको किल करने की फिर कोशिश करते हैं।
यानी गश्त कर रहे होते हैं पूरे बदन,
गश्त करते हैं। और दूसरी बात ये कि स्पेसिफिक होते हैं।
अच्छा।
हर एक जरासीम के लिए हर अपना एंटीबॉडी होता है।
अच्छा, ठीक है।
उसकी स्पेसिफिसिटी होती है और इसकी अपनी एफिनिटी होती है,
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे पास ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो एंटीबॉडी डॉक्टर साहब हम कहेंगे कि खुलिया है, सेल है, या
असल में
केमिकल है?
एंटीबॉडीज जो है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स।
अच्छा अच्छा अच्छा।
ये प्रोटीन और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बना होता
एक चीज बन जाती है, दोनों मिक्स होकर, और ठीक ठीक,
तो वो जो है फिर अपना फंक्शन करता है। फिर इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं,
ठीक है,
इसके जो है दो रीजन होते हैं, इसको वाई शेप स्ट्रक्चर इसकी है।
अच्छा, वाई जो है
इंग्लिश का अल्फाबेट,
ठीक है,
ठीक है, तो जो वी वाला स्ट्रक्चर उसका होता है वी
ऊपर वाला हिस्सा,
ऊपर वाला हिस्सा, तो उसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट,
अच्छा
एफ ए बी रीजन,
ठीक है।
और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटीजन एफ सी रीजन,
अच्छा।
तो बाज औकात जो है ये एफ ए बी रीजन होता है तो वो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं।
एंटीजन क्या मतलब डॉक्टर साहब?
एंटीजन हर वो चीज जो हमारे बदन पे हमला करता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, वायरॉन भी हो सकता है, वायराइड भी हो सकते हैं,
ठीक है।
मुख्तलिफ किस्म के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे बदन पे हमला करते हैं, तो ये उनके खिलाफ फिर कुव्वती मुदाफियत शो।
तो इसका मतलब वो जो वाई वाला वी वाला हिस्सा है वो हमारे वायरस बैक्टीरिया जो भी है उसके साथ जाके चिपक जाएगा, पकड़ लेगा उसे,
पकड़ लेगा,
अच्छा।
तो या तो उसको न्यूट्रलाइज खुद ही कर लेगा,
ठीक है,
या दूसरे सेल्स को जो है वो फ्लैग करेगा,
अच्छा,
कि
अच्छा।
मैं यहाँ पे जो सेल्स है जिसके साथ मैं अटैच हुआ हूँ
ये गड़बड़
पे हमला कर गए और इसमें कोई मसला है, तो फिर वो सेल्स आके उसको या तो खा जाएंगे या वो केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस करके उस सेल को जो है वो ब्लास्ट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस,
अच्छा,
सेल की डेथ हो जाएगी,
डेथ हो जाती है,
जब सेल की डेथ हो जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस या कोई फंजाई होगी तो वो तो मर जाएगी।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद हजरत साहब, एंटीबॉडी के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया और बड़ा बिल्कुल आपने ठीक का एक बड़ा पेचीदा किस्म का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे बदन में रखा है और एक दिफाई सिस्टम रखा है। इंशाल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि एंटीबॉडी थेरेपी क्या है, इस पर बात हम लोग आगे चलाएंगे। डॉक्टर अमजद हयात पीएचडी फेलो हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी से, गुफ्तगू उनसे आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी हम चलेंगे हसन जैदी के पास। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, 7:02 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक और चलते हैं ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि इन मनाजिर से आप लोग महजूज हुए होंगे, चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी, डॉक्टर अमजद हयात नाजरीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पीएचडी फेलो हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे गुफ्तगू डॉक्टर साहब से चल रही है एंटीबॉडी थेरेपी या एंटीबॉडीज के जरिए कैसे इलाज किया जा सकता है, और डॉक्टर साहब ने पहले हिस्से में हमें बताया कि एंटीबॉडीज होते क्या हैं, इंसान के बदन का एक पेचीदा सा दिफाई सिस्टम है और उसका एक बहुत अहम जुज एंटीबॉडीज होते हैं जो बाहर से आने वाले मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया जो भी ऐसी चीज जो हमारे बदन पे हमला करे या नुकसानदेह हो सकती है हमारे बदन के लिए उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मारते हैं या उसको बस उसकी शनासाई करते हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या है एंटीबॉडी थेरेपी जो है वो क्या है?
एंटीबॉडी थेरेपी एक तो यह है कि हमारे बदन में ये बनते हैं,
अच्छा।
वो तो नेचुरल सिस्टम है,
ठीक है।
नेचुरल सिस्टम यह है कि वायरस बैक्टीरिया फंजाई ये चीज ने हमला कर दिया,
ठीक है,
और इसके खिलाफ जो है हमारा बदन उसको और डिफेंस करना शुरू कर देता है,
ठीक है।
लेकिन बाज बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जिसके खिलाफ हम ये एंटीबॉडीज बनाते हैं,
ठीक है, खास तौर पे
बनाते हैं। सपोज एक वायरस है उसने अटैक कर लिया,
ठीक है,
ठीक है। एक तो हम पहले से वैक्सीन देते हैं लेकिन वैक्सीन ये चीजें फिर काम नहीं करती, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम ऐसे एंटीबॉडीज बनाते हैं,
ठीक है,
ये जो वायरस होता है इसका एक टुकड़ा, ठीक है, या इसका जो है एक हिस्सा, एक प्रोटीन,
ठीक है,
या एक पेप्टाइड, वो हम माउस में इंजेक्ट करते हैं,
अच्छा। ठीक
है, तो माउस उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो एंटीबॉडीज जिस जीन से बनते हैं तो वो जीन हम लेके फिर बैक्टीरिया में डालते हैं या बैक्टीरियोफेज में डालते हैं या सीएचओ सेल्स में डालते हैं और फिर वो हमारे लिए वही एंटीबॉडीज बाहर बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे,
ठीक है, अच्छा।
तो फिर हम उन एंटीबॉडीज को आइसोलेट करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं और उस वायरस के खिलाफ या उस जो है बैक्टीरिया के खिलाफ या उस कैंसर के खिलाफ फिर वो काम करते हैं।
बड़ा डॉक्टर साहब दिलचस्प चीज थी जो अभी आपने बताई है और मुझे नहीं पता था कि इतने लेवल पर रिसर्च होती है एंटीबॉडीज बनाने में, लेकिन अभी उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब इस तस्वीर में अगर थोड़ा सा इसको बता,
जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि वाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है,
ये एंटीबॉडी है,
ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वी वाली स्ट्रक्चर है तो इसका हम कहते हैं एफ ए बी रीजन,
ठीक है,
वो फ्रेगमेंट जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ बाइंड करेगा
वायरस वगैरह जो भी चीज हमला करेगी उसको,
हाँ,
पकड़े,
ठीक है। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको हम कांस्टेंट पोर्शन कहते हैं, इसको कहते हैं एफ सी रीजन,
ठीक है,
ठीक है। तो इसके भी मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं,
ठीक है,
या तो वो सेल्स के साथ अटैच होता है जिस तरह एलर्जी में होता है,
ठीक है,
कोई प्रोटीन वगैरह जिससे हमें एलर्जी होती है वो जब आ जाता है,
ठीक है,
तो ये एंटीबॉडी एफ ए बी रीजन उसको जो है ये सेल्स पे लगे होते हैं,
हाँ,
तो ये एफ ए बी रीजन उसको रिकॉग्नाइज करता है,
ठीक है।
तो जब ये रिकॉग्नाइज करता है तो ये सिग्नल नीचे सेल को देता है,
ठीक है,
तो वो सेल जो है मुख्तलिफ मीडिएटर्स पर प्रोड्यूस करते हैं,
अच्छा।
और उस मीडिएटर्स की वजह से फिर हमें जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो सामने आते हैं,
अच्छा, एलर्जी भी इसी वजह से हमारे सामने देखने मिलती है,
एलर्जी की वजह से।
बड़ा दिलचस्प बात है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार फिर थोड़ा सा हमें बताइएगा جیسے آپ نے کہا کہ تھراپی کہ ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں ماؤس میں یا چوہے میں, اس میں اس وائرس کے ایک حصے کو انجیکٹ کرتے ہیں, پھر وہاں سے ہمارے پاس جو اینٹی باڈی بن رہی ہے اس کو تھوڑا سا اگر اس کو کھول کے بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے.
مختلف پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں جو ماؤس سے لیے جاتے ہیں,
اچھا
اس کو کہتے ہیں کائمیرک اینٹی باڈی.
اچھا
ایک دوسرے ہیں کہ اس ہیومنائز اینٹی باڈی. کائمیرک اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ ہیں جس کے جین سیکوینس جو مکمل طور پر ماؤس سے لیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, تو اس کی پھر اینٹیجینسٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈفرینٹ آرگینزم سے آ گئے. جب آپ اس کو انجیکٹ کرو گے تو باڈی اس کے خلاف جو ہے ریئیکشن شو کرے گا,
اس کو بھی باڈی کہے گی کہ بدن ہمارا کہے گا کہ یہ تو کوئی اور باہر کی چیز,
باہر کی چیز ہو گئی نا.
اچھا
ٹھیک ہے, اور دوسرے ہیومنائز ہیومن ہوتے ہیں کہ کچھ سیکوینسز اس کے ہوتے ہیں وہ ہیومن سے ہوتے ہیں اور کچھ ماؤس سے ہوتے ہیں.
اچھا
ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیومنائز.
ٹھیک ہے,
اور دوسرے وہ اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن فلی ہیومن اس کو کہتے ہیں, تو وہ ایسے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی ہیومن سیکوینسز سے بنے ہوتے ہیں.
اچھا, لیکن انجیکٹ تو ہم چوہے میں ہی کر دیں گے پہلے,
وہ تو ہم صرف اس کو ریکگنائز کے اس اینٹی باڈی کا سٹرکچر کس طرح ہوگا, اس کا جو جین ہے اس کی سیکوینس کس طرح ہوگی.
ٹھیک
ہے, تو وہ صرف پروسیجر کو اسٹڈی کرنے کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے,
تو وہ ہم اینیملز میں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن جب ہم اس کو بناتے ہیں انڈسٹریل لیول پہ تو اس جین کو ہم پھر ایکولائی بیکٹیریا میں, جو سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں وہ ایکولائی بیکٹیریا, ایکولائی یوز ہوتی ہے, بیکٹیریو فیج یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سی ایچ او سیلز یوز ہوتے ہیں, چائنیز ہیمسٹر اووری سیلز اس کو کہتے ہیں. تو اس میں پھر ہم اپنے جین کو جو ڈیزائرڈ جین ہوتا ہے اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے والا اس کو انزرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو بایو ریئیکٹر میں چلاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اینٹی باڈی ہم نے جو ہے وائرس کو, جو بھی وائرس جو بھی چیز ہے اس کو چوہے میں انجیکٹ کیا, اینٹی باڈی ہمیں وہاں ملا چوہے کے اندر,
وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائے گا,
تو وہی اینٹی باڈی ہو کیوں نہیں ہم لوگ خود بنانا شروع کر دیں, کیوں اس کو بیکٹیریا میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ, اس جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤس جو ہے اس کا لائف اسپین,
اچھا
ٹھیک ہے, بیکٹیریا جو ہے وہ ماؤس کی جو ہے لائف اسپین زیادہ ہوتی ہے. سپوز وہ ایک مہینے میں بچے پیدا کرے گا,
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک ہی ماؤس ہے سپوز, ٹھیک ہے, تو ایک مہینے بعد دوسرا بچہ تیسرا بچہ اس طرح آئے گا, جبکہ بیکٹیریا اور بیکٹیریو فیج جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آفٹر ایوری 20 منٹس, ہر 20 منٹ کے بعد بیکٹیریا ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو سپوز آپ کے پاس جو ہے ایک دن ایک بیکٹیریا ہے تو ہر 20 منٹ بعد اس کی جو ہے ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے, ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جب بیکٹیریا ڈبل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے جنریشن زیادہ ہوں گی, تو اینٹی باڈیز ہمارے پاس زیادہ ہیں.
اچھا, یعنی بیکٹیریا کا استعمال صرف ہم پروڈکشن کے لیے کر رہے ہیں, یعنی یہ ایک وہ انڈسٹری فیکٹری کے کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو کیا بیکٹیریا کے علاوہ بھی ایسا کیا ہے ہم نے کہ ہم نے خود بنانے کی کوشش کی ہو کہ بھائی کیمیکلی طور پر فیکٹری میں,
اس طرح نہیں ہو سکتا,
اس طرح ہو ہی نہیں سکتا,
نہیں ہو سکتا.
ہاں, یعنی یہ بھی ہے کہ ایسے,
کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی اسپیسیفسٹی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
ہر ایک اینٹیجن کے لیے اپنا اینٹی باڈی بنتا ہے,
ٹھیک ہے,
جس کو وہ ریکگنائز کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ ہم انڈسٹریل لیول, کیونکہ اس کے لیے جین ریسپانسیبل ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس جین کو پھر ہم آئسولیٹ کرتے ہیں, وہ ہم بیکٹیریا, بیکٹیریو فیج یا سی ایچ او سیلز میں ڈالتے ہیں, اور پھر وہی سیل جو ہے ہم انڈسٹریل لیول پہ ان کو میڈیم پرووائڈ کرتے ہیں, خوراک پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی گروتھ ہوتی ہے, اور پھر جو سپرنیٹن ہوتا ہے جو میڈیا ہم ان کو دیتے ہیں, تو اس میں وہ اینٹی باڈی ایز اے بائی پروڈکٹ ہمارے لیے پروڈیوس کر.
اچھا ڈاکٹر صاحب, خود اینٹی باڈی خود بیکٹیریا کے خلاف کچھ نہیں کرتا جب وہ بیکٹیریا کے اندر بن رہا ہوتا ہے؟
وہ تو اس میں اصل میں بیکٹیریا کے اندر پلازمڈز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ایک تو اس کا اپنا جینوم ہوتا ہے ڈی این اے,
ٹھیک ہے,
اور اس کے اندر پلازمڈ ایکسٹرا سیلولر جو کہ اس کو ایکسٹرا طاقت دیتے ہیں,
ٹھیک
ہے, تو ہمارا جو جین ہوتا ہے ہم پلازمڈ کے اندر یا انسرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب اس کی ڈویژن ہوتی ہے تو وہ تو اس کی باڈی کا ایک حصہ بن گیا نا.
ہاں, اس کے بدن کا ایک حصہ ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے, یہ مجھے کوئی نقصان دہ نہیں ہے,
تو اس کو وہ کچھ مسئلہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب, اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟
اس تصویر میں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا اینٹی باڈی کا میکینزم, پہلے یہ سیل ہے ہمارے پاس بیکٹیریا کی, اس کو اینٹی باڈی اس پہ آ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں,
اوپر سے گر رہے ہیں,
ٹھیک ہے, اس کو ریکگنائز کر دیا, اس کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی. تو اب جو دوسرا سیل ہے نیچرل کلر سیل اس کو ہم کہتے ہیں,
جو بڑا سا بھورے رنگ
کا, جو اوپر والا ہے,
ٹھیک ہے,
یلو کلر کا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ابھی ریکگنائز کرے گا,
ٹھیک
ہے, اس کے ساتھ اینٹی باڈیز لگے ہوئے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہ کوئی فورن باڈی اندر آئی ہے,
یہ باہر کا بندہ ہے,
باہر کا بندہ ہے,
ٹھیک
ہے, تو یہ تو یہ کوئی میڈیئٹرز جس طرح آپ تیسرے والے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, وہ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے.
اب این کے سیل جو ہے
جس طرح آپ درمیان میں سے ریڈ زون اگر آپ دیکھیں, یہ کیمیکلز ریلیز کرتا
ہے,
تو اس کیمیکل ریلیز کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے سیل میں پورز पैदा हो जाए,
सुराख पैदा हो जाएंगे।
तो जब उसके सुराख पैदा हो जाएंगे तो उसके सारे केमिकल्स बाहर आ जाएंगे।
अच्छा।
तो एज ए रिजल्ट फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं कि उसकी श्रिंकेज हो जाएगी।
अच्छा, बैक्टीरिया खत्म हो
डेथ हो जाएगी।
बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जो आपने बताया कि एंटीबॉडी आके जो है वो उसके साथ चिपक जाते हैं ताकि बाकी सेलों को पता चल सके कि यार ये सेल जो है ये गड़बड़ वाला सेल है, इसको मारना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आमजद हयात नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, पीएचडी फेलो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारी गुफ्तगू चल रही है एंटीबॉडीज के जरिए कैसे इलाज किया जाए बदन में। डॉक्टर साहब ने हमें इसके बारे में तफसीलात बयान की। अभी हम चलेंगे हसन के पास और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर मोहम्मद हुसैन साहब मेरे ख्याल में बडगाम कश्मीर से, उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपको एक बहुत ही मजेदार सी चीज हम आपको बताना चाहते हैं। चीन में एक जेल है उसके हवाले से। बहरहाल ये जो है दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के जेल्स होते हैं और वहाँ पे जो जिन लोगों को कैद किया जाता है किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस रहे हैं तभी वहाँ पर भेजे गए। तो बाज लोगों के साथ मसला ये हो जाता है कि जब काफ़ी लंबे अरसे तक जब बाहर उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तब्दीली हो गई। अब आप हिसाब लगाइए कि 20 साल जो कैदी रह चुका है वो जब बाहर आएगा तो उसको हर चीज़ दुनिया की नई लगेगी। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और बहुत सारे जो पेशरफ जो हासिल हुई है टेक्नोलॉजी में ये सब जब देखेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चीन में एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है, बीजिंग के करीब ये जेल है और उसमें कोशिश की गई है कि जो कैदी 20 साल से ज़्यादा है हो गया है जेल में है वो जब वापस बाहर जाएं तो उनको मसले का यानी कम मसाइल का सामना करना पड़े। तो उन्होंने काम ये किया है कि माफ़ कीजिएगा कि आखिरी 3 महीने इन लोग ये जब जेल में रहते हैं उनके लिए कोर्स रखा है। 3 महीने का ये कोर्स है और उसमें कैसे आप जाके बस लाइन में खड़े हों, कैसे आप मेट्रो में जाके मेट्रो के मुख्तलिफ चीज़ें आप इस्तेमाल करें और वहाँ पे कार्ड डालें और दूसरी तरफ से निकलें, उसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेकिन जैसे कहा जाता है डमी वो उसके ज़रिए बताया गया है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ बैंकिंग जो सिस्टम्स होते हैं उनको भी बताया गया है कि किस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। और क्योंकि मसाइल ऐसे भी वहाँ पे पेश आए हैं और यकीनन दूसरी जगहों पे भी यही होता होगा कि खुद वहाँ के एक जो गार्ड है जेल का उसने कहा कि कुछ लोग जो बाहर निकले थे उनको ऐसा यानी मसाइल का सामना करना पड़ा कि आखिरकार वो खुदकुशी पर मजबूर हो गए थे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब बाहर गए तो नोट्स की जगह एटीएम कार्ड्स मौजूद थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी, हर एक जो है वो एक ख़ास चीज़ में मसरूफ़ था जैसे उनको नहीं मालूम था शुरू में स्मार्टफोन उसे कहते हैं। तो ये सारे मसाइल ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल की ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन अगर आदमी उनसे दूर हो जाए तो हो सकता है कि बहुत डिप्रेशन और दीगर मसाइल का शिकार हो जाए। इसको हल करने की कोशिश की है, बहरहाल एक अहम कदम और मेरे ख्याल में एक मुस्बत रास्ता है। हम लोगों के बहरहाल इन तरह के इंतज़ामिया के इदारों को भी सोचना चाहिए अपने पब्लिक के बारे में, अपने बहरहाल माशरे के बारे में। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में वक्ज़ाय किए बगैर चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी। नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर आमजद हयात यहाँ पर मौजूद हैं और एंटीबॉडीज़ के जरिए इलाज के बारे में डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली कैसे फिर किन बीमारियों का इलाज और किस तरह फिर हम लोग इस उसमें आ जाते हैं?
इसके लिए मुख्तलिफ जो है बीमारियाँ होती हैं जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। इन्फेक्शन जो है हम उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं।
ठीक है
लेकिन बाज़ बैक्टीरिया वायरस जो इन्फेक्शन काज करते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो एंटीबायोटिक से नहीं मरते।
अच्छा।
तो फिर हम उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं।
ठीक है।
इसके अलावा जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए।
अच्छा।
जैसे एलर्जी मैंने आपको अभी बता दिया
जी।
कि जो आईजीई होता है ठीक है वो एलर्जी को शुरू करता है।
ठीक है।
ठीक है। तो हम अगर आईजीई को ब्लॉक कर लें
ठीक है
तो वो जो है वो एलर्जी अराइज नहीं होगी।
ठीक है।
इसके अलावा जो कैंसर सेल्स होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं।
ठीक है सर।
और इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं।
अच्छा,
ऑटो इम्यून डिजीजेज में जो है फिर हम वो भी एंटीबॉडीज से ट्रीट कर
इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब कोई खतरात हैं इसमें इस ट्रीटमेंट में?
इसके खतरात भी हैं और फायदे भी हैं, जैसे कि हम हर एक मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके इम्पोर्टेंस भी होती है। ठीक है। तो एंटीबॉडीज के खतरात ये हैं कि इसकी वजह से हम आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं।
आपका अपना जो इम्यून सिस्टम,
आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है, जैसे साइटोकाइंस हैं जो केमिकल मीडिएटर, मैंने आपको भी बता दिए कि एंटीबॉडीज हैं, उसका तो अपना फंक्शन होता है ना,
ठीक है, काम कर रहे हैं,
काम कर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अब हम इसको ब्लॉक करें तो डेफिनेटली आपका बदन जो है डिफेंस के लिहाज से कमजोर हो जाएगा,
ठीक है
तो वो इन्फेक्शन को जो है ज्यादा ससेप्टेबल होगा,
छोटी मोटी बीमारियां
जो आपको इजिली अटैक कर सकती है। इसके अलावा रीएक्टिवेशन ऑफ द इन्फेक्शन, सपोज आपको पिछले 10 साल में या 5 साल में आपको टीबी थी, ठीक है, तो उसकी आपका बदन में तो उसके सेल्स मौजूद होते हैं ना,
ठीक है? बिल्कुल
रहते तो हैं, लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो गया तो वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं।
अच्छा,
तो इस वजह से मतलब जिस बंदे जो बंदा एंटीबॉडीज थेरेपी ले रहा है तो उसको चाहिए कि एक तो वैक्सीन ना ले, क्योंकि वैक्सीन भी जो लाइव बैक्टीरिया तो नहीं होती, लेकिन हीट किल्ड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया,
ठीक है,
वायरस होते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपके बदन में दोबारा जिंदा हो जाते हैं और आपको अटैक करते हैं, और इसके अलावा जो है कैंसर भी एक आस करता है, तो मुख्तलिफ किस्म के मैलिग्नेंसीज जो है इसके साइड इफेक्ट इसके साथ।
अच्छा डॉक्टर साहब, अमली तौर पर प्रैक्टिकली हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान में कहीं ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर नहीं किया जा रहा कब तक आएगा अस्पतालों में?
ये तो बहुत पहले से, मेरे ख्याल में 1998 में जो पहली एंटीबॉडी ये अप्रूव हुई थी,
अच्छा ठीक है,
FDA जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने 1998 में अप्रूव की थी, और एलर्जी के हवाले से भी हमने बात की, तो इस वजह से मैं एग्जांपल भी उसके बारे में देना चाहता हूँ, ओमालीजुमाब, ये अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, और एलर्जी के लिए जो सिवियर केसेस होते हैं,
अच्छा,
तो इसके लिए हम वो यूज करते हैं,
तो वो एंटीबॉडी है,
एंटीबॉडी
जबरदस्त
जो को IgE को ब्लॉक करता है और एलर्जी की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है,
तो ये अभी हमारे पास मार्केटों में
मौजूद है,
जबरदस्त।
और मेरे ख्याल में ये 2003 में,
ठीक है,
इसकी अप्रूवल आई थी,
ठीक है,
और अभी तक तकरीबन 40 से ज्यादा एंटीबॉडीज ये अप्रूव हुए हैं,
अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए
FDA ने अप्रूव किए हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हैं,
ठीक है,
एंड मोर देन 200 उस पे जो है अभी काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बन जाती है, फिर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं,
कैसे ये असर कर रही
है, कैसे असर कर, इसके साइड इफेक्ट्स कितने होंगे, किस तरीके से होगा, तो मुख्तलिफ ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहा है,
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप?
फ्यूचर तो ये है कि मेरे ख्याल में कि हर बंदे का जो जीनोम जिस तरह सीक्वेंस हो रहा है,
ठीक है,
पूरे बंदे का DNA सीक्वेंस, तो हर एक बंदे के लिए अपनी एक ड्रग बनेगी, उसके जीनोम के लिहाज से ड्रग बनेगी,
अच्छा,
और जो उसके लिए स्पेसिफिक होगी और उसके साइड इफेक्ट्स की चीजें फिर थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद हयात, बड़ी जबरदस्त किस्म की मालूमात आपने हमें दी, हमारे नाज़रीन को दी, उम्मीद करते हैं कि उनको भी पसंद आई होगी आपकी गुफ्तगू, इस्तेफादा किया होगा उन्होंने गुफ्तगू से, डॉक्टर ने बड़ी दिलचस्प बातें हमें बताई, और शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अमजद हयात का कि वो उन्होंने टाइम निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो चलते हैं हसन की तरफ। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, बहुत ही अच्छी मालूमात महरल हम जैसे जाहिल को फराहम की, और हम आपको बताते चलें कल का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम होगा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कयोम शहादत है कल एक रिवायत के मुताबिक, और जनाब कैसर अब्बास साहब तशरीफ लाएंगे, और इसके अलावा डॉक्टर निशात कैसर भी हम लोगों के साथ होंगी, और ये रोल मॉडल के इंतखाब में वालदैन के किरदार पर रोशनी डालेंगे। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में। जी नाज़रीन, बहरहाल तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे साथ तआवुन किया प्रोग्राम के दौरान, और हम लोगों का हफ्ते का मौजू जारी रहेगा यानी रोल मॉडल का इंतखाब। लैला बतूल साहिबा से गुफ्तगू हुई हमें और डॉक्टर अमजद हयात साहब तशरीफ लाए थे। उम्मीद है कि आज का भी प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, कल के प्रोग्राम के हवाले से आपको हमने बता भी दिया, और खुर्रम भाई ने भी बहुत जबरदस्त मालूमात फराहम की।
मैंने तो खैर कोई बात नहीं बताई, आपने बड़ी अच्छी जो है खबर आप लेके आए थे चाइना से। जी जी बिल्कुल,
चाइना की
बिल्कुल बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीजें, और दिलचस्प बात यह है कि सोचा जा रहा है हर हमारा जो सोसाइटी है उसके हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए, जो लोग मिसाल के तौर पे जिस्मानी तौर पे उनको मुश्किलात हैं उनकी किस तरह मदद की जा सके, ये लोग जो एक दफ़ से माशरे में आते हैं और ये जब 20 साल जेल में गुजार के जब माशरे में आएंगे तो हकीकत है कुछ नहीं, उनको समझ जाएगा क्या हो रहा है, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से सब चीजें तब्दील हो रही हैं, तो बहुत मसला पेश आ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
इस तरह के मसाइल इंशाल्लाह हम लोग आपसे भी यानी इस तरह की चीजें जो नई चीजें ईजाद हो रही हैं आपको
ہم بتائیں گے ان کے بارے میں, آپ لوگ بھی ہمیں بتائیے اگر مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کچھ ہو رہا ہے, کوئی خاص کام ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے ہم لوگ کو ضرور بتائیے گا. پروگرام میں ہم لوگ شامل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں وقت ہو گیا,
بالکل, بس اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کا دن بھی آپ کو خوشیوں اور خوشخبریوں سے بھرا رہے. مجھے خرم گردیزی اور حسن زیدی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
خدا حافظ.